जैसे पिछले साल भी इसी समय में ये आया था और इस नृसिंह का कथा हुआ था, और उसमें हिरण्यकशिप के वध तक चर्चा की गई थी। तो इसलिए मैं सोचा कि इस साल आगे, उससे आगे जो आठम अध्याय तक चर्चा हुआ था, नवम अध्याय, सातम स्कंद के नवम अध्याय, जिसमें विशेष रूप में अभी उग्रमूर्ति में कौन है, नृसिंहदेव हिरण्यकशिप को विदारण करने के प्रांत भगवान शांत नहीं थे, बड़े क्रोध मूर्ति में थे, उग्र मूर्ति में थे। हैं, श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय 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 श्री नृसिंह, उग्र वीरं महाविष्णु ज्वलन्त सर्वतो मुखम्, नृसिंहभीषणं भद्रम् मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय 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 श्री नृसिंह, प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंग। श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय 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 श्री नृसिंह, प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। तब कर कमल बरे नख अद्भुत सिंह, दलित हिरण्यकशिपुर तनु भृंग, केशव धृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल बरे नखा अद्भुत सिंह, दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंग, केशव धृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशव धृत सिंहदेव, जय नृसिंहदेव, नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव, जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, प्रभुपाद। तो अभी आप उसी उग्र नृसिंह मूर्ति को ध्यान कर सकते आपके मैंने राधा रास बिहारी मंदिर के प्रांगण में, हे भगवान को देखे कैसे हैं, क्योंकि अभी हिरण्यकशिपु का वध हो चुका है, भगवान ने इसको विदारण कर चुके हैं हैं। इसी नृसिंह कथा की प्रारंभ करते हुए श्रीमद् भागवत की प्रसिद्ध टीकाकार श्रीमद् श्री श्रीधर स्वामी कहते कि सो भक्त पक्षपातेन तद विपक्ष विदारणम नृसिंहम अद्भुतम वंदे परमानंद विग्रहम। सो भक्त पक्षपात, किसको अपने भक्त कौन, प्रह्लाद, प्रह्लाद के पक्ष लेकर भगवान ने तद विपक्ष विदारण, इसके विपक्ष में कौन था, हिरण्यकशिपु को विदारण कर दिए और ऐसे अद्भुत ने उग्र नृसिंह मूर्ति में विराजमान रहे और उसी परमानंद विग्रहों को ध्यान करते हुए हम इस कथा को प्रारंभ करेंगे हैं? कि भगवान नृसिंहदेव के ऐसे उग्र मूर्ति को दर्शन करते हुए सबसे पहले ब्रह्मा जी सामने आते हैं। ब्रह्मा आदि इस अध्याय की प्रारंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते कि श्री नारद उवाच, ये प्रसंग जो है नृसिंहदेव की कथा, ये कौन किसको कह रहा है मूल रूप में, नारद मुनि कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। और इसको बात में सुखदेव मने सुखदेव गोस्वामी फिर उसी प्रसंग को परीक्षित महाराज कह रहे हैं और उसी प्रसंग को फिर नैमिषारण्य में कौन कह रहा है, सुत गोस्वामी, सारे सनक आदि ऋषियों को कह रहे और उसी को व्यासदेव जी ने फिर भागवत के ग्रंथ में रचना किए हैं, भागवत ग्रंथ में इसको लिपिबद्ध किए। इसलिए अभी जो उग्र मूर्ति में नृसिंह भगवान को देखते हुए और सारे देवता ब्रह्मा आदि देवगण आकर उनकी स्तुति किए, लेकिन जब भगवान ने शांत नहीं हुए, उग्र मूर्ति में घोर गर्जना कर रहे थे, पहले तो नृसिंह इसको फाड़ दिए, किसको, हिरण्यकशिपु को फाड़ डाले। इसके बाद उसके जितने भी सैनिक थे, इसके सपोर्टर हिरण्यकशिपु के जितने भी सभी मित्र थे, बंधु थे, उसके सैनिक थे, जो लोग ने सभी हिरण्यकशिपु को ही अपने आत्मसमर्पण कर रखा था, वह भगवान के रूप में मानते थे, हिरण्यकशिपु के शरण में थे, सभी क्रोधित होकर आए, लेकिन भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं, केवल नाखून से ही फाड़ के सबको फेंक दिए इधर उधर। भगवान ने उस समय दो ही हाथ में नहीं थे, ऐसा ही अपने अपने की इच्छा मुताबिक हाथ से प्रकट हो रहा था, असंख्य हजार हाथ प्रकट कर रहे थे भगवान, और जिस साइड से कोई साइड से कोई रख के साथ फाड़ के फेंक देते थे, इतने क्रोध में थे। तभी नारद मुनि आगे युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं इस अध्याय के प्रारंभ से, एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मा रुद्रपुरः सराः न पयितुम् अशकन् मन्यु संग्रभं सुदुरासदम। नारद मुनि कहे कि सुरादय सर्वे, सभी देवता हैं, इनमें कौन कौन थे ने, ब्रह्मा रुद्र पुरह सरा, ब्रह्मा जी और रुद्र अर्थात शिव जी भी उसमें शामिल थे, ब्रह्मा रुद्र आदि सभी उसमें शामिल थे, बड़े बड़े देवताओं, और ये सभी कोई भी उनको शांत करने में सक्षम नहीं हुआ। ब्रह्मा जी स्तुति किए, शंकर जी स्तुति किए, इंद्र स्तुति किए, इसको आगे पढ़ें, कौन सा श्लोक देखें, पहला श्लोक से देखो, प्रथम श्लोक क्यों, स्तुति आठम श्लोक से प्रारंभ हो रहा, लेकिन प्रारंभ से बैकग्राउंड भी है। ओके, क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा, चलो ठीक है, वो मेरा पास किताब है, आप उधर से देख रहे हैं ना, वो स्क्रीन लगा हुआ उसमें वो देखते रहे। हाँ, नारद मुनि ने कहा ब्रह्मा शिव इत्यादि अन्य बड़े बड़े देवताओं का साहस न हुआ, क्या किसी लिए साहस नहीं हुआ, भगवान की सामने जाने के लिए, कि भगवान ये दूर से रहकर स्तुति, भगवान ने तो इसको सभी को हिरण्यकशिपु समेत उसके सारे समर्थकों को बद्ध करके ही गर्जना करते हुए हिरण्यकशिपु का ही सिंहासन में जाकर बैठे थे। ये घटना कहाँ पर हुआ था हैं? कौन सा जगह पर ऐसे घटना हुआ था? ये हिरण्यकशिपु का सिंहासन कहाँ पर था जहाँ पर भगवान नृसिंहदेव बने बैठकर गर्जना करते थे? बोलते वो दृश्य हमारे सामने आना चाहिए। कहाँ पर थे? हविलो में। वो जाते हैं कोई लोग, कुछ लोग जाते हैं, आज भी वो खंभा है जिस खंभे के अंदर से प्रकट हुए थे कौन? नृसिंहदेव हैं। उस खंभे से प्रकट होकर वहीं पर वो अपना दरबार बना रखा था कौन? हिरण्यकशिपु हैं। वहीं पर दरबार था, वहीं पर उसके सिंघा, वहीं पर नृसिंहदेव प्रकट होकर उग्र मूर्ति में बैठे थे। और ब्रह्मा आदि सारे बड़े बड़े देवता स्तुति करके प्रसन्न, जो प्रसन्न नहीं कर पाए दूर से, फिर भी स्तुति करते थे, पास में नहीं बट दूर से खड़ा होकर स्तुति करते थे भय से। लेकिन ब्रह्मा रुद्र पुरहसरा नौ उपैतुम का अर्थ भगवान के समक्ष जाने में असकम समर्थ नहीं थे। और इसी प्रकार मन्यु संग्रह जो अत्यंत क्रुद्ध मूर्ति में थे जो भगवान नृसिंहदेव, और जिनके पास में पहुंचना अत्यंत दुष्कर था, संभव नहीं था, सुदुरासदम ऐसा ही अत्यंत क्रोधित नृसिंहदेव के पास में जाने के लिए ये सब भी असमर्थ थे। ब्रह्मा रुद्र आदि देवता सभी भय से कंप रहे थे कि नृसिंहदेव ने जब शांत नहीं हुए गर्जना करते थे, लग रहा था कि वो तीनों लोक को अभी क्या करेंगे, भस्म कर डालेंगे सब कुछ। जैसे उनके क्रोध में भस्म, सभी लोग भयभीत हुए थे। बोले एक तो हिरण्यकशिपु की भय से हम लोग इनको प्रार्थना किया था ये प्रकट हुए, लेकिन हिरण्यकशिपु को तो मार डाले, लेकिन ये तो अभी तो रुद्र मूर्ति में ये तो हैं लग रहा कि ये स्वयं ही सबको समाप्त कर देंगे। फिर सारे देवता लोग ने भयभीत होकर खड़े थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा अनुनय विनय किया भगवान की शक्ति, इनकी अंतरंग शक्ति कौन? लक्ष्मी जी। सोचे कि उनकी सहधर्मिणी उनकी पत्नी है, हो सकता कि वो इनको शांत कर पाएगी हैं। साधारण कोई पति क्रोधित होता तो उनको शांत करने वाला कौन होती है? पत्नी शांत करती ना, गृहस्थों को अनुभव है हैं? जो कोई पति तो क्रोधित हो जाते तो तब पत्नी का मैंने जो देखते हैं इधर तो उसके पत्नी के पास में पहुंचते हैं बच्चे लोग, उधर पिताजी क्रोधित है तो बच्चे लोग कहाँ पर जाते हैं? माँ के पास जाते हैं। तो माँ ने फिर प्रयास करते हैं उनको शांत करने के लिए, ठीक है समझा बुझा कर। तो इसलिए सभी ब्रह्मा जी ने सोचे कि हो सकता कि उनकी अंतरंग शक्ति कौन? श्री जी, लक्ष्मी जी ने इनको शांत करने में समर्थ होगी। ऐसे भावना लेकर ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी की तरफ देखे, सारे देवता लोग ने लक्ष्मी की तरफ देखते थे, श्री जी की तरफ देखे, उनको उन्होंने विनय किए हैं। लेकिन नारद मुनि कहते कि साक्षात श्री ही प्रेषिता देवई दृष्ट्वा तंग महदद्भुतम अदृष्ट्वा श्रुत पूर्वत्वात् सानोपयाय संकिता। साक्षात श्री, स्वयं श्री जी लक्ष्मी जी भी हैं भगवान के प्रेषिता अर्थात भगवान के समक्ष में जाने में हैं सास प्रेषिता, इसको विशेष रूप में ब्रह्मा जी ने समक्ष जाने के लिए उनको प्रार्थना की हैं प्रेषिता, इनको प्रार्थना की लक्ष्मी जी को प्रेरणा किए कि आप थोड़ा माता जी जाइए आगे, आगे जाकर शांत कीजिए किनको, आपके पति को हैं शांत कीजिए, नहीं तो तीनों लोग को ये ध्वंस कर डालेंगे, अभी आप कुछ कीजिए उपाय हैं। श्री प्रेषिता तो इसलिए लक्ष्मी जी को भेजे लेकिन लेकिन लक्ष्मी जी ने जो सामने जा रहे थे, लेकिन वो देखे कि ऐसे ही अद्भुत रूप हैं अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात्, पहले वो कभी ऐसा रूप नहीं देखी थी कौन? लक्ष्मी जी भी ऐसे रूप नहीं देखी थी, यदि उनकी पत्नी थी उनकी अंतर्गत शक्ति उनके ही अर्धांगिनी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा रूप कभी पहले नहीं देखी थी ऐसे उग्रा मूर्ति हैं। इसलिए अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात् पहले कभी भी ऐसा ही कभी सुना भी नहीं था, वैसा ही कभी देखा भी नहीं थी कौन? लक्ष्मी जी भी देखे नहीं थे, वैसे ही कभी सुने ही थे, जैसे घोर गर्जना ऐसा गर्जना करते, नृसिंहदेव जो गर्जना करते थे ऐसे कभी नहीं सुने थे, ऐसे उग्र मूर्ति। लक्ष्मी जी ने थोड़े आगे जा रहे थे, लेकिन देख कर तो समझ गए कि सामने जाऊंगी तो हो सकता है मेरे को ही थप्पड़ लग जाएंगे, हैं अभी मैं ही जाऊँ तो मरे ऊपर भी लग जाएगा थप्पड़। अभी इतने उग्र मूर्ति थे, इसलिए अदृष्टा अश्रुता पूर्व, तो आप पहले कभी भी ऐसे रूप देखी नहीं थी कि सुनी नहीं थी ऐसे ही गर्जना को। तो इसलिए सा नो नोपेताय संकिता, स्व भी वही अर्थात वही वह लक्ष्मी भी उपयाय भगवान के समक्ष जाने के लिए संकिता भयभीत हो गई। लक्ष्मी जी भी सामने जाने के लिए साहस नहीं की। लक्ष्मी जी ने कह दिया कि हाथ जोड़ के माफ करो, मैं नहीं जाऊंगी अभी सामने, कहे कि मैं नहीं जाऊंगी, हे मेरे पति है, लेकिन फिर भी अभी जिस मूर्ति में ये है सामने, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा कभी गर्जना में पहले सुना नहीं, न ऐसे क्रोध मूर्ति कभी देखा, कभी नहीं देखा ऐसा। क्यों? भगवान साधारण कौन से गुण में रहते हैं? सप्त गुण के, शुद्ध सप्त के प्रतीक है, हैं? रजोगुण के प्रतीक है ब्रह्मा जी, और तमोगुण के प्रतीक कौन? शिव जी। अब भगवान सब समय शांत दांत रहते, वो पालन का भार लेते, सारे जगत को पालन करते हैं, पालनहार है, प्रत्येक जीवन को कल्याण के लिए सब समय वो सभी के पालन का दायित्व लिए हैं। लेकिन वो ऐसे ही कभी क्रोधित नहीं हुए किसी के ऊपर, वो तो बड़े शांत रहते। बड़े शंकर जी कभी कोई क्रोधित हो जाते हैं, अपने त्रिशूल उठाकर भागते राक्षसों के पीछे, लेकिन भगवान तो बड़े शांत रहते हैं, बड़े प्रेम से सभी काम को निभा लेते हैं। चाहे महाभारत के युद्ध में वो रथ अर्जुन के सारथी बनकर बैठे, लेकिन फिर भी बड़े मुस्कान में, मुख में मुस्कान रहता है भगवान। लेकिन आज ही की मूर्ति है, इसलिए उन्होंने साहस नहीं कि लक्ष्मी जी। इसलिए प्रभुपाद ने कोट करते हैं ब्रह्मांड पुराण से, जो कि जिसको माधवाचार्य हमारे ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य माधवाचार्य ने इसको कोट करते हैं कि ये जो भागवत के श्लोक है ये केवल अन्य पुराणों में से वर्णन भी आता है, ब्रह्मांड पुराण से उन्होंने श्लोक को उद्धृत करते कि अदृष्ट्वा सितः पूर्वत्वात् अनै असाधारणै जनै नृसिंहं संकितैर्लो श्रीलोकहर महायनौ ययु प्रह्लादे चैव वात्सल्य दर्शनाय हरेरपि ज्ञान्त्वा मनस्तथा ब्रह्मा प्रह्लादं प्रेषयत् तदा। तो इसलिए वहाँ भी प्रभुपाद कहते कि ये प्रमाण भी केवल भागवत में नहीं है, प्रमाण ब्रह्मांड पुराण में भी दी गई है, जिसको माधवाचार्य ने अपने कोट करते हैं इसी प्रसंग में अपने कमेंटरी में कि लक्ष्मी ने भी कभी ऐसे ही रूप देखे नहीं थे, अदृष्टवा ऐसे कभी रूप नहीं देखी थी। इसलिए लक्ष्मी जी ने सीधे सीधे मना कर दी कि किनको? देवताओं विशेष ब्रह्मा जी को, कि मैं नहीं जाऊंगी सामने। इसलिए ये कार्य करने के आगे कहते प्रह्लाद ही चाहिए, बात प्रह्लाद को देखने से भगवान शांत होंगे, आगे उसको पढ़ेंगे। तो लक्ष्मी जी ने जब मना कर दिए कि मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा, देवता लोग ने बड़े कहे अभी करेंगे क्या, अभी सारे देवता 33 कोटी देवता खड़े हुए हैं, उसमें ब्रह्मा जी है, शंकर जी भी खड़े हैं, इंद्र चंद्र वरुण सारे सभी लोग, और सभी लोग भय से कंप रहे थे, और उनके लीडर के सारे देवताओं के लीडर कौन है? हैं ब्रह्मा जी लीडर है, हैं? कोई राक्षस जब भी उत्पात करता है तो सारे देवता जाते ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को लेकर फिर जाते क्षीरसागर किनारे में, क्षीरसागर सागर किनारे खड़ा होकर भगवान क्षीरसागर क्षीर दुखसाई विष्णु को स्तुति करते हैं, सारे अवतार उनके माध्यम से इस प्रकट होते हैं। लेकिन आज तो ब्रह्मा समेत सभी देवता प्रयास करने पर, माता श्री जी को लक्ष्मी जी को भी प्रेरण करने पर भी उपाय नहीं देखा कि भगवान को शांत करने का। लक्ष्मी जी थोड़ा देख रहे जा रहे थे, भगवान उसकी तरफ देख नहीं रहे, किसकी तरफ? लक्ष्मी की तरफ, गर्जना कर रहे, भीषण गर्जना। तो इसलिए कि भगवान ने चाहते थे भी कि उनको शांत करने का जो कीर्ति, अर्थात अपने भक्त किसकी, प्रह्लाद की कीर्ति को वर्धन करने के लिए, जिनके लिए उन्होंने, जिनके लिए, जिनकी रक्षा के लिए उन्होंने प्रकट हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान नृसिंहदेव के भाव को एक प्रकार के समझाए, क्योंकि भगवान ने सभी तेन ब्रह्म हुदा आदि कोई भगवान नहीं, उनके हृदय में सबसे पहले दिव्य ज्ञान प्रदान किए थे उनके अंतकरण से, इसलिए ब्रह्मा जी ने समझ गए कि हो सकता कि ये प्रह्लाद को भेजने से ही भक्तवत्सल भगवान शांत हो सकते हैं। इसलिए आगे नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि प्रह्लादं पेशयामास ब्रह्मावस्थितं मस्तिके तात प्रसमयो एपि स्वपित्रेः कुपितं प्रभु। प्रह्लाद महाराज से कहने लगे, ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े हुए हैं, उनके पास में ही खड़े थे। कौन खड़े थे? अवस्थित, तो उनके पास में स्थित थे, खड़े थे जो प्रह्लाद महाराज, उन्हीं को ही अनुरोध किया। प्रेषयामास, उनको भेजे बा उनको अनुनय किए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हो सकता कि प्रह्लाद इनको शांत कर सके, इसीलिए जो सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत लिखते हैं वो पर भक्तों की जो लिस्ट देते हैं, भक्तों की मैंने लिस्ट, मैंने भगवान के शुद्ध भक्तों में से किस किस स्थान कहाँ पर है, ये ब्रह्मा जी शंकर जी के परे भी इनके स्थान रखते हैं। किनके स्थान? प्रह्लाद महाराज के स्थान है, क्योंकि जिन नृसिंहदेव को ये सारे 33 कोटि देवता भी शांत नहीं कर पाए थे, शंकर जी भी नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी भी शांत नहीं कर पाए जिनकी स्तुति सुनकर, वो नृसिंहदेव शांत हो गए किसकी स्तुति श्रवण करके? प्रह्लाद की। स्तुति भी नहीं किए थे, केवल प्रह्लाद ने आगे जाकर केवल चरण में गिर पड़े, प्रणाम करते हुए देख कर ही नृसिंहदेव एक क्षण में शांत हो गए थे। इसलिए ये सभी भक्तों से यहाँ तक देवताओं ब्रह्मा शंकर जदिवा में कहते कि वैष्णव मानांग जथा शंभु, समस्त वैष्णव में कौन श्रेष्ठ माने जाते हैं? शंकर जी, लेकिन फिर भी प्रह्लाद जी के स्थान उनसे भी ऊर्ध्व में है भक्तराज हैं प्रह्लाद। इसलिए ब्रह्मा जी ने इनको उन्होंने प्रसयामास इनको भेजे, ब्रह्मा जी ने प्रह्लाद उन्हीं के पास में जो खड़े थे प्रह्लाद महाराज को आगे भेजे हैं, और उनकी अत्यंत जो कि अवस्था अंति के उनकी अत्यंत निकट में जो प्रह्लाद जी ने खड़े थे उनको भी भेजे, कहे कि तात अर्थात हे पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने इनको संबोधित करते थे कैसे, क्यों प्रह्लाद महाराज ने कितने साल की उम्र में थे? 5 साल की उम्र में बच्चे थे बालक, छोटे बच्चे 5 साल के बालक थे, तो इसलिए प्रह्लाद स्वाभाविक इनको पुत्र रूप में संबोधित करना। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहे कि तात प्रसमयो अपि ही, तुम इनको प्रशांत करो, प्रसमय अर्थात शांत करने के लिए प्रयास करो। किनको? भगवान नृसिंहदेव को। हम तो 33 कोटि देवता सारे प्रयास करके विफल हो गए, अभी तुम प्रयास करो। पास में जाओ उपे ही, कृपा करके इनके पास में जाओ। किनके पास? नृसिंहदेव के पास। वो खुद ही नहीं जा सकते थे, कोई भी कोई देवता की हिम्मत नहीं है पास में जाने के लिए, ना लक्ष्मी जी की हिम्मत है, लेकिन फिर वो कहते कि तुम जाओ। ब्रह्मा जी को विश्वास था कि ये जा पाएगा, कौन? प्रह्लाद, क्योंकि जानते थे प्रह्लाद के कैसे स्वभाव है, जो हिरण्यकशिपु का क्रोध में भी विचलित नहीं हुआ है। हिरण्यकशिपु का भी ऐसे ही क्रोध मूर्ति देखने से देवता लोगों ने कंपते थे, 33 कोटि देवता है तभी, लेकिन ये निर्भीक था, ये भयभीत नहीं होता था, कौन? प्रह्लाद। हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हो रहा था, कैसा लड़का है, मेरा ही लाला, मेरा ही लड़का, 5 साल के बच्चा, मेरा क्रोध में और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब ये 33 कोटि देवता कंपते हैं वैसे। तो इसलिए नारद मुनि ने सॉरी ब्रह्मा जी ने सोचे कि हो सकता प्रह्लाद, आम से भी भयभीत है, लेकिन प्रह्लाद के मुख कमल को देखने से पता लगता कि इसकी अंतकरण में कोई भय नहीं है, ये निर्भीक है। इसलिए कहे कि आप जाओ, प्रसय आप ही इनको शांत कराओ, पास में जाओ, उपे ही भगवान की इनको प्रशमित करने के लिए क्रोध को आप पास में जाओ, क्योंकि स्वपित्रे कुपितं प्रभु, ये भगवान ने क्रोधित हुए किसके प्रति? प्रह्लाद के पिता की प्रति, कौन? हिरण्यकशिपु के कार्यकलाप से, बा हिरण्यकशिपु के प्रति असुरी पिता पर अत्यधिक क्रोध है, अतः तुम आगे जाकर इनको शांत करो। ब्रह्मा जी ने से कहा, प्रह्लाद को कहे, ऐसे कहने पर प्रहलाद जी ने कोई मैंने कोई इसके प्रतिवाद नहीं किया है। तब इसलिए ऐसे जब कहे नारद मुनि कहते कि तभी तथे दी सनक ही, सनक ही माने आस्ते आस्ते, सनक का अर्थ धीरे धीरे। राजन महाभागवत अर्भक, राजन अर्थात महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते कि महाभागवत अर्भक, महाभागवत है स्वयं गुरु अपने शिष्य को सम्मुख कहते कि महाभागवत। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे प्रहलाद को, यह पर भी वचन क्योंकि नारद जी ने कह रहे युधिष्ठिर महाराज को, इसलिए नारद जी ने महाभागवत शब्द जो उपयोग कर रहे हैं किसके लिए उपयोग कर रहे हैं? प्रहलाद के लिए है महाभागवत है। और अर्भक का अर्थात यदि भी छोटे बालक थे, छोटे से बालक थे, फिर भी ये महाभागवत थे है। और प्रहलाद महाराज को ऐसे कहने पर महाभागवत अर्भक जो कि छोटे बालक के रूप में थे, उपेत्य भूमि कायेन, तभी उन्होंने काय अर्थात शरीर को, संपूर्ण शरीर को नीचे गिराते हुए, नीचे संपूर्ण रूप में नीचे पतित होकर उपेत्य थे, धीरे धीरे निकट में जो गए नृसिंहदेव के सामने और पृथ्वी पर गिर पड़े, संपूर्ण शरीर को पृथ्वी पर गिराते हुए ननाम विधृत अंजलि ही, अर्थात ननाम का अर्थात प्रणाम किए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और हाथ जोड़े। प्रणाम किए तो हाथ कहाँ पर रखे थे? हम कभी कोई प्रणाम करते ना जमीन पर, कोई के हाथ को ऐसे ही छुपा लेते, कहाँ ऐसे रख लेते ना, प्रणाम करते सिर आगे रहता लेकिन हाथ कहाँ रहता है? यहाँ पर कोई के हाथ को पीछे कर लेते हैं, लेकिन प्रणाम करने के समय में हाथ कहाँ रहना चाहिए? कहाँ रहना चाहिए? ऐसा नहीं नाक, ये नाक के पास रख रहे हैं, नाक के पास भी नहीं है। प्रहलाद महाराज जब नृसिंहदेव के सामने जाकर प्रणाम किए, साक्षात साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, दंडवत, दंड का अर्थ क्या? दंड से रखा गया, संन्यास दंड इधर है लेकिन ये दंड है, तो ये दंड को यदि गिरा जाएगा कैसे कैसे गिरेगा? पूरे सीधे गिरेगा है। इसलिए दंडवत, जैसे कोई बांबू कष्टी कैसे रखना, पूरे के छोड़ देगा तो दाट के गिरेगा सीधे। इसलिए प्रहलाद महाराज साष्टांग दंडवत प्रणाम किए थे, लेकिन किए थे तो उनके दोनों हाथ कहाँ पर था? है तो ये हाथ दोनों कहाँ था? शरीर का कौन सा साइड में, कौन सा कहाँ पर था? इनका हृदय में छुपा हुआ था, ये ऐसा ही था, देखिए नाक में, जैसे आप देख रहे नाक में ऐसे ही था ना, कैसा था? कहाँ था हाथ? पूरे सामने, सिर तो ऐसे भूमि को स्पर्श कर रहा था, दोनों हाथ कोई देखा सकता दंडवत प्रणाम कैसे? प्रणाम करके देखो कैसा, ये देखेंगे कैसे प्रणाम करते हैं प्रहलाद महाराज ने, इधर इधर सामने इधर पूरा कैसा प्रणाम? हाथ है देखो, हाथ कैसे पर रहा, कहाँ रहा? आगे। तो दंडवत प्रणाम इसको कहते हैं, तो हाथ पूरे सामने था, पूरे सिर के आगे है। तो प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार जाकर विधृत अंजलि अर्थात हाथ जोड़े हुए, दोनों हाथ को आगे करते हुए सिर के आगे, अष्टांग कहते अष्टांग मान समस्त अंग जब इनको स्पर्श किया हुआ है। और इसी प्रकार जब छोटे से बालक हैं, प्रहलाद महाराज ने ब्रह्मा जी कहने पर और ब्रह्मा जी की बात सुन ली और धीरे धीरे भगवान नृसिंहदेव के पास बढ़े और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े और उन्हें साद और दंडवत प्रणाम किया। तभी प्रहलाद को इसे प्रणाम करते हुए देखकर इतने जो क्रोध मूर्ति में थे सिंहदेव, एक क्षण में ही शांत हो गए हैं। पांच नंबर श्लोक में कहते कि स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवं कृपया परिप्लुतं उत्थाप्य तस्न्यपदात् कराम्भुजं कलाही मित्रस्तदीयांकृता भयम्। जब तत्पाद मूले, किनकी पाद चरण, किन किन चरण तले, किन के चरण के नीचे? नृसिंहदेव। तत्पाद मूले पतितम, गिरते हुए देखा कर रहे हैं। प्रहलाद ने जब गिरे तम, अर्थात प्रहलाद महाराज को वो छोटे से बालक जो अर्भकम जो छोटे से बालक प्रहलाद महाराज श्री 5 साल के बालक थे, इनको देखकर विलोक्य, इनको देखकर देव कृपया परिप्लुतः, देव कौन, भगवान नृसिंह देव भाव विवोल हो गए, परिप्लुत भाव विवोल हो गए, मैंने इनके क्रोध तो केवल शांत नहीं हुआ, वात्सल्य में भाव में विवोल हो गए प्रहलाद को देखते ही, चरण कमल में गिरते हुए छोटा सा बालक को देखकर, जैसे कोई पिताजी अपने छोटे नन्हा सा बालक को देखने से प्रणाम करते हुए हैं बिहोल हो जाता है प्रेम में, अपने बच्चे को देखकर प्रणाम करते हुए, नृसिंहदेव वात्सल्य में बिहोल हो गए प्रहलाद को देखकर, इतने बड़े जो क्रोधमूर्ति था एक क्षण में शांत हो गया, अभी तक स्तुति भी नहीं की है, देवता लोग ने सभी मिलकर तो बहुत स्तुति किया शांत करने के लिए, शांत नहीं हुए, अभी प्रहलाद महाराज ने स्तुति भी नहीं की है, केवल प्रणाम ही किए चरण में, प्रणाम करते हुए देखकर चरण में गिरते हुए देखकर प्रहलाद को शांत हो गए वो, हैं बड़े भाव में विवल हो गए, कृपा में कृपा अपने कृपा शक्ति, भगवान की कई शक्ति होते, विशेष में कृपा शक्ति के द्वारा भगवान ने विशेष में मोहित होकर अपने वहित की कृपा से ही भाव विवल हो गए, और ये कह रहे उनको उठाए, कैसे उठाए, कहे ना उठो प्रहलाद उठो, ऐसे कहे स्वहस्त में उठाए, कौन, नृसिंहदेव झुक कर खड़े मने बैठे तो उठकर सिंहासन बैठे थे तो उन्होंने झुक कर प्रहलाद को उठाए, जैसे कहीं पिताजी पिता पुत्र को देखते ही प्रणाम करके उठाता है और उठाकर अपने गोद में ले लेता है, है? भगवान नृसिंहदेव ने उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए देखिए देखकर कृपया परिप्लुत अर्थात भाव विवल हो गए अहित की कृपा से, उत्थाए उनको उठाकर तत्शीर्ण उनके सिर पर अदधात कर अंबुजम, उनके सिर पर क्या रख दिए, हाथ को रख दिए, छोटा से बालक थे भगवान ने सिंहासन में बैठे थे और उठकर प्रहलाद इतने ही खड़े थे, खड़े होने पर भी ऐसे ही छोटे खड़े थे, तो भगवान ने अपने हाथ को कर कमल को रख दिया, किनके किसके ऊपर, तब कर कमल बरे नखा अद्भुत सिंहम, क्या अद्भुत है भगवान के, कोई कमल में है तब कर कमल, इनके कर कमल ने इनकी हाथ को किसके साथ तुलना की जा रही, कमल के साथ है? लेकिन अद्भुत सिंह है इसका कर कमल, लेकिन उसमें क्या है, नाखून है, है? कितने बड़े बड़े, ये अद्भुत मने इसलिए है विरोधाभास है, कोई इतने सुंदर कमल मुलायम हस्त कमल होते हुए भी फिर उसमें वज्र के समान नाखून, वज्र से भी अधिक कठिन नाखून, जो कि हिरण्यकशिपु का शरीर में तो वज्र इंद्र का वज्र भेद नहीं करता था, इंद्र की जो वज्रपात करने बा वो किसी राक्षस को अपने अस्त्र फेंकने से वज्र फेंकने से वो विदारण हो जाता था, लेकिन उस वज्र फेंकने पर भी हिरण्यकशिपु के शरीर में वो भेद नहीं कर सकता था, लेकिन भगवान के जो नाखून है वो उससे भी अधिक है कठिन था, जिस नाखून इसके हिरण्यकशिपु को शरीर को विदारण करने में सक्षम था, और इतनी सुंदर कमल हस्त में मुलायम हस्त के साथ वो ऊपर में क्या था, भगवान किसी उग्र मूर्ति बा ऐसे ही कठिन नाखून से युक्त था, तो लेकिन भगवान ने जब प्रहलाद को उठाए तो बड़े भक्तिभाव से बा भक्त वत्सलता को प्रदर्शन करते हुए उनको उठाते हुए आपने कर कमल को उनके सिर पर रखा, क्या रखा, नाखून को तो रखे थे किसकी छाती के ऊपर, लेकिन प्रहलाद के सिर पर क्या रखे, नाखून को रखे नहीं, ठीक है, इनके हस्त का हस्त कमल जो मुलायम जो कि बहुत सुंदर मुलायम अंग जो कमल के समान मुलायम जो उसी हस्त कमल को उस बालक के सिर पर रखे हैं, कृपया परिप्ल उत्थाय तत्सिन्नम दधात करांभुजम, अपने कर अंबुज को हैं कमल को कर कमल को उसी इनके सिर पर रखे हैं, और उनका हाथ जो कि इनकी कर कमल कैसे था ना, जो कि सभी को अभय देने वाला था हैं, करांभुजम इसको रखे, और काल ही काल रूपी सर्प का जो तुरंत ही मार सकता विभिन्न उनका हाथ उसके समस्त भक्तों को अभय दान करने वाला है। इस हस्तकमल यदि अग्रभाग उनके नाखून हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस को विदारण करने वाला था, लेकिन उनकी हस्त का जो कमल समुन जो अत्यंत मुलायम हस्त, ये भक्तों को अभय प्रदान करने वाला था। इसलिए प्रहलाद के सिर पर हाथ को रखकर भगवान ने इसको समस्त भय से मुक्त कर दिए। किसको? प्रहलाद को। क्योंकि भगवान ने उनकी सिर पर हाथ रखे, और ये भगवान के हाथ ऐसे ही रखना, भगवान के हाथ कोई हमारे हाथ जैसा ऐसे ही नहीं होता है, हैं? जैसे ही ध्रुव महाराज के सिर में भगवान ने क्या टच कर दिया था, वहाँ पर हाथ तो नहीं रखे थे, खाली शंख को टच कर दिया था। उसी से ही ध्रुव महाराज के अंतकरण में समस्त अज्ञानता संपूर्ण रूप में नष्ट हो गया था, दिव्य ज्ञान से परिप्लुत हो गए, हैं? उनके सारा शरीर में अष्टसात्विक विकार आने लगा, कंपने लगे, भाव में विवल हो गए थे। कौन? ध्रुव महाराज भी ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से ये बहुत सुंदर स्तुतियां भगवान की करने लगे थे ध्रुव महाराज। उसी प्रकार जब भी भगवान सिंहदेव प्रहलाद महाराज के सिर को स्पर्श किए, तो प्रहलाद महाराज के मन में जितनी भी भौतिक कलमश था सब कुछ नष्ट हो गया था। क्योंकि भगवान स्वयं प्रहलाद महाराज आगे कहेंगे, क्योंकि उनकी जन्म कहाँ हुआ था, एक राक्षस की कुल में, राक्षस की पुत्र के रूप में। प्रहलाद किस पर कोई साधारण राक्षस नहीं था, हैं? कौन था वो? हिरण्यकशिपु, हैं? हिरण्यकशिपु की पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। इसलिए सतत कर स्पर्श, उसी भगवान के कर स्पर्श जब हुआ प्रहलाद के सिर पर, तभी अखिल अशुभ, जितने प्रकार के अशुभ था उनके शरीर में, जो कुछ भौतिक इच्छाएं था राक्षस कुल में जन्म होने के कारण, तो वो सभी अशुभ तत्क्षणात विलोप हो गए। समस्त भौतिक इच्छाएं, विशेष में जो इच्छाएं भौतिक इच्छाएं, जो अशुभ का अर्थ प्रभुपाद जी इसका दात करते कि अशुभ का अर्थ भौतिक इच्छाएं, भिन्न प्रकार की जो भौतिक इच्छाएं, ये समस्त इच्छाएं तत्क्षणात नष्ट हो गया है। नृसिंहदेव के द्वारा प्रहलाद महाराज के सिर स्पर्श करने से प्रहलाद के समस्त भौतिक कलमश तथा इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं पूर्णतया धुल गई, हैं? इसलिए वे दिव्य पद को प्राप्त हो गए। नृसिंहदेव की कर स्पर्श करने के पर उनके शरीर को सिर में रखने के कारण, सिर में हाथ रखने का अर्थ क्या, भगवान ने इनको क्या प्रदान किया, अभय प्रदान किया, हैं? इनको आशीष दिए कि और तुमको भयभीत होने का कोई प्रयोजन नहीं है, एक तो तुम्हारे पिता को तो विदारण कर चुका हूँ, इसकी अला भी ये संसार में साधारण तो जो भी ये भौतिक जगत में विचरण करते हैं ये भयभीत रहते हैं, लेकिन तुमको और किसी भी वस्तु में भय होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अभय देने वाले कौन, स्वयं भगवान नृसिंहदेव उनको आश्वासन देते हुए इनके सिर पर हस्त धारण किए। और इसलिए जो भगवान के चरण में पूर्ण शरणागत भक्त है वो जानता है कि हैं कृष्ण जिसको रखेंगे, राखे कृष्ण मारे कृष्ण रखे के हैं भक्तिविनोद ठाकुर। इसलिए अपने शरणागति भजन में वो सुंदर गाते हैं, तुमी तो राखी बेजारे के तारे मारी ते पारे, तब इच्छा बस त्रिभुवन तब इच्छा बस त्रिभुवन तुमी तो मारी बेजारे के तारे राखीते पारे, तब इच्छा बस त्रिभुवन तब इच्छा बस त्रिभुवन। भगवान यदि किसको मारना चाहेंगे इसको कौन रक्षा कर सकता है, यदि भगवान किसको रक्षा करना चाहेंगे इनको कौन मार सकता है। तो इसलिए प्रहलाद को भगवान ने पूर्ण आश्वस्त कर रहे थे कि देखो तुमको और कोई भय नहीं है, इसलिए अतः दिव्य पद को प्राप्त हो गए प्रहलाद महाराज। उनके अंतकरण में समस्त भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गए और उनके शरीर में आनंद के अद्भुत लक्षण सभी दिव्य लक्षण प्रकट हो गए, उनका हृदय प्रेम से पूरित हो गया है। तत्पाद पद्म हृदय निवृत दधौ हृष्टतनु, हृष्टतनु माने उनके शरीर पूरा हर्षित हर्ष में दिव्य सात्विक भावना से उत्प्रत हो गया है। उन्होंने पूरित हो उठा, उनकी हृदय प्रेम से पूरित हो उठा हृष्टतनु, और उन्होंने फिर दिव्य किरणहित दिव्य आनंद के कारण आस्ते आस्ते अश्रु लोचन आंख से अश्रु बहाते हुए, अश्रु के ही कारण से आंख से बहता है, हैं विशेष में दो कारण से अश्रु बहता है, किसके किस कारण से, दुख दुख जब व्यक्ति बेसी यदि अधिक दुख हो दुखित होता है उसके आंख से अश्रु बहता है, अत्यंत दुखी होने से, कोई ऐसे कुछ अद्भुत संकट हठात कुछ संकट आने से है अपने आप अश्रु बहता है, बा कभी कभी अधिक सुखी होने से आनंद से, जो दुख से जो अश्रु बहता वो कैसे होता और सुख में अश्रु बहने से वो कैसे होता है, आंख से जो दुख में जो अश्रु बहता वो कैसे, एक अश्रु गर्म होता है और दूसरे अश्रु थोड़ा ठंडा होता है, कौन सा अश्रु गर्म होता है कौन सा ठंडा होता है, सुख वाला दुख वाला गर्म होता है और सुख वाला अश्रु ठंडा होता है। अभी नृसिंहदेव जब प्रह्लाद के सिर पर हाथ रखे तो प्रह्लाद के शरीर भी आनंद में पूरित हो गया, उनके आंख से आनंद से अश्रु बहने लगा, तो ये जो अश्रु बह रहा था हैं ठंडा अश्रु है, बड़े आनंद से पूरित होकर जब हुए तो उनके आंख से अश्रु बहने लगा, और वे अंतकरण में हृदय में भगवान के चरण कमल को बंदी बना लिया, हृदय में किसको धारा चिंतन कर रहे थे, भगवान के चरण कमल को, नृसिंहदेव के चरण कमल को ही हृदय में बंदी बना लिए धारण कर लिए। तो इसी प्रकार प्रभुपाद ने तात्पर्य में से कहते कि मांच यो अव्यभिचारण भक्ति योग ने सेवते स्वगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते हैं। इसी प्रकार जो अव्यभिचारिणी भक्ति योग में, जैसे प्रह्लाद महाराज ने अव्यभिचारिणी भक्ति को आश्रय करके ही भगवान नृसिंहदेव को प्रसन्न करने में समर्थ हुए, इसी प्रकार जो ऐसे अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात अन्य किसी में कहीं आश्रय नहीं लेना, जैसे कोई सती स्त्री का एक ही पति होता है, हैं उसको कहते कि सती स्त्री, और जो कोई स्त्री का और कई पुरुषों में मति रखता तो उसको क्या कहते, व्यभिचारिणी है वेश्या, लेकिन अव्यभिचारिणी का अर्थात जिसकी मति कई भिन्न भिन्न अन्य अन्य स्थान में नहीं एक स्थान पर केंद्रित रहता है, एक पति में जिसकी मति केंद्रित है, प्रह्लाद की मन एकमात्र किसके चरण कमल में केंद्रित था, नृसिंहदेव की, इसलिए वो अव्यभिचारिणी भक्ति का अव्यभिचारिणी भक्ति करते थे, इसलिए ये समस्त गुणों के प्रभाव से मुक्त हो गए। हम साधारणतः तीनों गुण के द्वारा प्रभावित तो होते हैं संसार में, तो इसलिए स्वगुणान समति तैतान, समस्त गुणों से गुणों की प्रभाव से सतगुण रजगुण तमगुण इन गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर भगवान नृसिंहदेव के चरण कमल को हृदय में धारण करने में समर्थ हो गए हैं। ब्रह्म भूयाय कल्पते, इसी प्रकार वो दिव्य पद को प्राप्त हो गए, भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भी योग्य है, ये नहीं कि साधना में सोचते कि कोई कोई सोचते कि नहीं ब्राह्मण होने से भक्ति का, ब्राह्मण लोग के प्रति भगवान, क्योंकि भगवान कहते हैं नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान साधारण गाय और ब्राह्मण के प्रति विशेष वत्सल होते से कहा जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में हम देखते कि प्रह्लाद के स्थान, प्रह्लाद में कोई ब्राह्मण था नहीं, ब्राह्मण घर में जन्म नहीं हुए, राक्षसी घर में जन्म हुए, इसलिए आगे स्तुति में प्रह्लाद ने इसको समझाएंगे कि भगवान को यदि कहा, लेकिन एक भक्त है भगवान को कितनी प्रिय होता है, यदि वो समस्त गुणों से युक्त ब्राह्मण के गुण से युक्त कोई ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ व्यक्ति वो भी भगवान को इतनी प्रिय नहीं होता है जितनी प्रिय उनकी भक्ति करने वाले, शुद्ध भक्ति करने वाले प्रह्लाद जैसे भक्त उनको प्रिय होते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद ने कोट करते कि भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भी योग्य है। भगवद गीता में भगवान ने इसको कहते हैं स्त्रीय शूद्र तथा ने स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र तेपी जानती परांग गतिम मांग ही पाप पार्थ व्यपाशित्य स्त्य पिशु पाप जनय। प्रहलाद जैसे पाप जोनी प्राप्त और राक्षस कुल में जन्म होते हुए भी व्यक्ति क्योंकि भगवान की भक्त के भक्ति की है इसलिए भगवान के प्रिय बन गए। ऐसे साधारण प्रिय नहीं है, ब्रह्मा शंकर और श्री जी लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय बन गए। किनको? भगवान को है प्रहलाद ने। इसलिए जो अव्यविचारिणी भक्ति ऐसे ही करे मति को एकमात्र केंद्रित करता है, मति को केंद्रित कर लेता है भगवान के चरण कमल में, वो भगवान को ऐसे ही प्रिय बन सकता है जैसे प्रहलाद ने इनके प्रिय बने हैं। इसलिए कोई भी भक्ति कर सकता चाहे स्त्री हो वैश्य हो या शूद्र क्यों न हो, लेकिन वो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर सकता है यदि वो अव्यभिचारिणी भक्ति करें प्रहलाद की तरफ। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज जब ही चरण कमल में नृसिंहदेव के चरण कमल में खड़े थे, नृसिंहदेव इनके हस्त कमल को उनके माथे पर धारण किए हुए थे, तब प्रहलाद महाराज ने पूरे आँख बंद कर आनंद से बहता था, पूरा समाधि में थे, उनको बाह्य ज्ञान नहीं था, संसार के चिंतन नहीं था, केवल नृसिंहदेव को चरण कमल को हृदय में धारण करते हुए दिव्य आनंद में समाधिस्थ थे। ऐसे अनुभव किसको है हम लोग में, किसी को है? प्रास दिवस दिव्य भगवान की अद्भुत कृष्ण भावनामृत में ओतप्रोत होकर पूरे संसार को भूल जाए दिव्य आनंद में, इसी को समाधि कहते हैं, जो संपूर्ण रूप में बाह्य जगत के चिंतन से मुक्त होकर भगवान के चरण कमल को के चिंतन में तल्लीन होकर जो पूरे संसार को भूल जाना, ये इतने आसान से संभव नहीं, लेकिन प्रहलाद महाराज के पक्ष में संभव था। किस लिए संभव था? क्योंकि भगवान की ये विशेष शुद्ध भक्ति की है, और ऐसा ही भगवान की शुद्ध भक्ति केवल महान शुद्ध भक्तों की कृपा से भी संभव होता है। क्योंकि प्रहलाद जदि और दैत्य कुल में जन्म लिए थे, लेकिन इनके प्रति कृपा था, जिन्होंने इनकी महिमा को गायन करते तो उन्हीं की कृपा था। कौन? नारद मुनि की कृपा था। ये नारद मुनि की कृपा से ही इनको ऐसा शुद्ध भक्ति प्राप्त था। प्रहलाद सदय धर्मं भागवतं कृत, प्रहलाद ऐसे ही महाभागवत बने थे क्योंकि ये विशेष रूप में इनके गुरु नारद मुनि की अद्भुत कृपा के कारण, नारद मुनि की विशेष कृपा के पात्र थे, इसलिए इस प्रकार भाग्यवान थे। और पूर्ण समाधि में मनोजोक के साथ पूर्ण समाधि में अपने मन को निवेश करते हुए नृसिंहदेव के चरण कमल को हृदय में धारण करते हुए कि अस्तवसित उन्होंने भगवान हरि के प्रार्थना करना प्रारंभ किया। एकाग्र मनसा संपूर्ण मन को उनके चरण में निवेशित करते हैं और अत्यंत मनोजोग से सुसमाहित प्रेम गदगदया, अत्यंत प्रेम से गदगद होकर वाणी गदगद आंख से अश्रु प्रेमाश्रु बह रहा था, वाणी गदगद हो रहा था और उनके मुख कमल से बाचा वाणी निर्गत हुए और ये प्रहलाद महाराज की स्तुति के रूप में प्रसिद्ध हुआ श्रीमद् भागवत में। तो प्रहलाद महाराज 12 महाजन में से एक महाजन है। प्रहलाद महाराज की जो स्तुति है ये स्तुति हमारे लिए आदर्श है क्योंकि महाजन है। कहते कि महाजन जन गतस्य पंथा, कई लोग ऐसे स्तुति करते हैं, हम लोग कई स्तुति सुनते हैं, कोई आजकल के सब गीत का जो भजन कई भजन गाने वाले कई कविता लिखने वाले सब होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग सुन करके भी हम कभी कभी सुनते हैं, कोई विनोद अग्रवाल का सुनता है, कोई दूसरे का सुनता है, वो अपना गीत बनाकर लिखता है, लेकिन प्रहलाद महाराज की स्तुति ऐसा ही नहीं है जो लोग ऐसे गाने आजकल के जो गीत बनाकर गाने वालों की तरफ, क्योंकि प्रहलाद महाराज स्वयं 12 महाजन्म से एक महाजन है। महाभागवत अर्भकम है, छोटे बालक होने पर भी ये महाभागवत थे, इनके स्थान अन्य महाजनों की स्थान से कोई न्यून नहीं था। जैसे भागवत में 12 महाजनों के नाम को जमराज ने उल्लेखित करते हैं, छठा स्कंद भागवत में स्वयं जमराज कहते कि ये समस्त भागवत धर्म को भक्ति के रहस्य को जानने वाले 12 व्यक्ति होते हैं और उनमें से कौन कौन है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बलीर भैया सकी वयम। जमराज अपने जमदूतों को कह रहे कि देखो ये भागवत धर्म के रहस्य को 12 लोग हम जानते हैं, उनमें से है स्वयंभू स्वयं ब्रह्मा जी जो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, जिनकी कोई माता पिता और दूसरे नहीं है, स्वयंभू नारद जी, शंभू स्वयं शंकर जी, स्वयंभू नारद शंभू, चारों कुमार सनक सनातन सनंदन सनत कुमार कपिल मुनि देवहूती पुत्र कपिल, मनु स्वयंभू मनु वैवस्वत मनु, ये सब धर्म की भागवत रहस्य ज्ञानता है कपिल मनु, प्रह्लाद है प्रह्लाद महाराज के नाम आता, जनक राजर्षि जनक सीताजी के पिताजी, प्रह्लाद जनक भीष्म भीष्मदेव, बलिर व्यास की बलि महाराज प्रह्लाद के प्रह्लाद का ही पोता है, प्रह्लाद के पुत्र ने हाँ विरोचन विरोचन के पुत्र बलि है, हाँ बलि व्यास की व्यासदेव जी के पुत्र कौन? सुखदेव गोस्वामी है, वयम स्वयं जमराज 12 महाजन है। अरे महाजन में से प्रह्लाद महाराज ने, प्रह्लाद महाराज एक महाजन है। यदि कोई धर्म 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 की जो रहस्य है अत्यंत गुह्य है, इसको समझना इतने आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी आसान से इस धर्म के रहस्य को भगवान को प्राप्त करने के मार्ग को समझ सकता है। कैसे समझ पाएगा? यदि महाजनों की मार्ग को अनुसरण करेगा। महाजन जन गतस्य पंथा धर्मस्य तत्व निहितम गुहायम महाजन जैन गतस्य पंथा, यदि महाजनों के मार्गानुसरण करेगा वो समझ पाएगा। इसीलिए प्रह्लाद महाराज ने ये जो स्तुति पूर्ण समाधि में रहकर मनोजोग के अपने मन तथा दृष्टि को भगवान नृसिंहदेव पर स्थिर कर दिया, तब स्थिर मन से अवरुद्ध वाणी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगे। तो इसलिए प्रह्लाद महाराज की स्तुति इस अध्याय का 8 श्लोक से प्रारंभ होता है। यदि ये स्तुतियों को यदि हम जीव जी स्तुति में जो शिक्षा प्रह्लाद महाराज ने केवल स्तुति नहीं गाए, शिक्षा इनके स्तुतियों के माध्यम से उन्होंने हमें भगवान की भक्ति की शिक्षा भी प्रदान की है। भगवान भक्त भगवान के शुद्ध भक्ति के रहस्य को उन्होंने व्यक्त किया। इसलिए उन्होंने सबसे पहले दैन्यता को शरणा जो कोई भक्त भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकता है, को किस भक्त की प्रार्थना को भगवान सुनते हैं? जो संपूर्ण रूप में शरणागत है। नरोत्तमदास ठाकुर अपने प्रसिद्ध नेसरी भक्तिविनोद ठाकुर अपने प्रसिद्ध शरणागति के भजन में कहते हैं कि षडांग शरणागति होई बेजहार ताहर प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार षडांग शरणागति होई बेजहार ताहर प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रुते वरण अवश्य राखीबे कृष्ण विश्वास पालन दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रुते वरण अवश्य राखीबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्येर स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार भक्ति अनुकूल मात्र कार्येर स्वीकार
अति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार।
शरणागत भक्त के चरित्र में छह लक्षण दिखाई पड़ते हैं। भक्ति ठाकुर कहते क्या क्या? दैन्य, आत्मनिवेदन, भगवान मेरी पालक, गोत्रुते वर्णम अर्थात भगवान मेरी पालक है, मेरी पालनहार है, मेरे सारे खान पान आवश्यकता को कौन देता है? कृष्ण देते हैं और दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है। भगवान ही मेरे एकमात्र पालक हैं, भगवान ही मेरा रक्षक है। गोत्रुप्ते वर्ण अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन, और भक्ति अनुकूल को स्वीकार करना, प्रतिकूल को त्यागना, ये छह लक्षण शरणागत भक्त की चरित्र में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज की स्तुति करते हैं पहला श्लोक में ही, पहला स्तुति में इन्होंने अपनी दैन्यता को प्रकट करते हैं। शरणागत भक्त की जो सबसे पहला लक्षण भक्ति विनोद ठाकुर कहते क्या है? दैन्यता, दैन्य, ह्यूमिलिटी। क्या कहते हैं इसको? ह्यूमिलिटी है। भक्त बड़े दैन्य होता है, अहंकारी नहीं होता है, गर्व नहीं होता उसके पास में। तृणादपि सुनी चे न तरोपि सही सुना अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। भगवान हरि की कीर्तन करने के लिए सबसे पहला गुण है, ये आवश्यकता है, क्या? दैन्यता। तृण से भी तुच्छ, वृक्ष से भी सहनशील होकर दूसरों को सम्मान देने के लिए सदा तत्पर रहते हुए अपने सम्मान के प्रति आशा न करना, ये जो गुण है इसको दैन्यता। समस्त योग्यता होते हुए भी भक्त अपने को बड़ा दीनहीन पतित ही समझता है। इसलिए यद्यो प्रहलाद महाराज की स्थिति ब्रह्मा शंकर आदि समस्त देवताओं की ऊर्ध्व में था, लेकिन नृसिंह देव के सामने उन्हें अपनी दैन्यता को प्रकट करते हुए स्तुति के प्रारंभ करते हैं। कौन? प्रहलाद महाराज। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि इसी श्लोक की व्याख्या के साथ कथा आज बंद करेंगे। प्रहलाद महाराज की स्तुति प्रारंभ हो रहा है, उन्होंने कहते कि ब्रह्मादय सुरगणा मुनय सिद्धा सत्वकतागतो वचसा प्रवाह नाराधि पुरगण रघुना विप्रु विप्रु किंतुमहती स मे हरिग्र जाते हैं। प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की कि असुर परिवार में जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं भगवान के प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं? आज तक ब्रह्मा आदि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तम उत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, यद्यपि ये सारे व्यक्ति सत्वगुणी एवं परम योग्य थे, तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए? मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य है। इसलिए भगवान को प्रसन्न कर, भगवान के जो सत शुद्ध भक्त होते सब समय आप लोगों को क्या समझते हैं? अयोग्य, सबसे दीनहीन पतित, ऐसे ही मानते हैं। प्रभुपाद जी ने भी जब अमेरिका की भूमि पर जाकर पहले उतारे, पहले जब पदार्पण के अपने जमीन रखे अमेरिका बोस्टन हार्बर में, जलदूत से उतर कर पैर रखे, पता नहीं था कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है राइट जाना है, उनको कुछ आइडिया नहीं था। उन्होंने भी इस प्रकार दैन्यता को प्रकट किए हैं, भजन लिखे तुरंत जाकर बंगाली भाषा में, अपने तुरंत एक भजन उनकी स्वतस्फूर्त भाव से रूप से उनके मुख से निश्चित हुआ लिखे, वहाँ भी ऐसे ही कहते कि हे प्रभु आप मुझे यहाँ पर ले आए, क्यों लाए मुझे ही पता नहीं है, नाम तो मेरा बड़ा बहुत बड़ा नाम है, क्या भक्ति वेदांत नाम दिया गया मुझे, बड़े नाम दिया गया, लेकिन इसका अर्थ मुझे भी पता नहीं है, मैं तो है, लेकिन आप यदि चाहोगे तो ये नाम के सार्थक हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पर ले आए, लेके आए तो कुछ ना कुछ आपके उद्देश्य है, लेकिन प्रभु नाचाओ नाचाओ मोरे नाचाओ, काष्ठेर पितुली जैन नाचाओ, हमारे काठ का पितुली के समान आप मुझे नचाइए, आपकी प्रसन्नता के लिए, आप जिसके लिए मुझे यहाँ पर लाइए, आप जैसे चाहते मुझे ऐसा ही नचाइए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी किसी रूप में भी एक पितुली के रूप में नाचने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास में कोई योग्यता नहीं, वेदना नहीं, मेरे पास ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, नाम है बड़ा डरो, भक्ति वेदांत नाम है वे सार्थक करो, नाम बहुत बड़ा मुझे उत्पादि दिया गया भक्ति वेदांत, लेकिन मेरे पास में कोई ज्ञान नहीं है, वेद माने ज्ञान, ज्ञान नहीं कि भक्ति भी नहीं, प्रभुपाद जी से महासंत संत कहते कि मेरे पास कोई ज्ञान व भक्ति नहीं है, मैं तो संपूर्ण रूप में आपकी कृपा की पर भरोसा रखा हूँ। जो शुद्ध भक्त है होते हैं सदा ऐसे ही धन्यता को प्रकट करते हैं, वो अहंकारी नहीं बनते, कहते कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ, हैं अभी ब्रह्मा और शंकर जी भी आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, मैं देखो आते ही प्रणाम करते हैं प्रसन्न हो गए, हैं तुरंत होता ना, हमारे मन में ऐसे ही हो जाएगा। धरो आप कोई व्यक्ति के पास हम गए, कोई भी मने कोई बैठे, धरो आप कोई भी, धरो कोई विशेष हमारे इधर गुरु महाराज बैठे बा, कोई भी बड़ा व्यक्ति बैठा है और दूसरे लोग गए उनकी तरफ वो देखे नहीं, ऐसे तो उनको नज़र नहीं, लेकिन कोई भक्त गया और उसको महाराज ने हाँ हाँ आओ तुम खुश है, उसके पास में बैठे के सिर में हाथ देते तो उसका मन में क्या होता है, अहंकार में फूल जाता है, सबको तरफ देखता है, देखो देखो मैं कैसे हैं, मैं कितना महान हूँ, देखो कि गुरु महाराज आप सबको किसी को नहीं, बात भी नहीं कि आपको देखे नहीं, लेकिन मेरे को आते ही देखो मैं कितना महान हूँ। प्रहलाद महाराज ऐसे ही थे नहीं, भगवान नृसिंह देव उनके सिर पर हाथ रखकर फिर भी उन्हें दैन्यता से, प्रहलाद महाराज बड़े दैन्यता से वो अपने को अयोग्य समझते थे, इसलिए कहते कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनोय अथा सिद्धा, ये जो ब्रह्मा आदि जितने भी देवताएं 33 कोटि देव सुरगुणा मुनय, केवल देवता नहीं थे वहां पर, सारे मुनि ऋषि थे, सप्त ऋषि बड़े महान ऋषियां हैं सभी उपस्थित थे, सिद्ध पुरुष जितने भी सिद्धगण हैं, जैसे सिद्ध महापुरुष जो कि सनक आदि ऋषियां हैं, सनत कुमार चारों कुमार और सभी ऋषि मुनि जो सिद्ध लोक में रहते हैं, ऊपर में जनलोक महलोक तपलोक हैं सिद्धलोक आदि, ये ब्रह्मलोक तक रुद्धलोक में जो सात गुण सात लोक में जो रहते हैं, इनको साधारण क्या माना जाता ना, सत्वैकतान है गतय, इनको सत्वगुणी माना जाता है, ऊर्ध्वलोक में जो निवास करने वाले व्यक्ति उनको सत्वगुणी माना जाता है, जो मर्त्यलोक में हम जैसे मनुष्य योनि में रहते हैं, इनको मुख्य रूप में कौन सा गुण हमारे पास में अधिक है, रजगुण हैं, लेकिन जो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं उनको सारा सत्वगुणी माना जाता है, आध्यात्म स्थिति व आध्यात्म जीवन के लिए उनको योग्य माना जाता है, लेकिन ऐसा ही जो सत्वगुणी व्यक्ति बचा संग ये लोग भी बच्चा आपको वचन में अपने वचन से वाणी से स्तुति से आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, ये अपने के ठीक ठीक से स्तुति नहीं कर पाए, लेकिन हे प्रभु मेरा तो स्थिति कैसे है, उग्र जात, उग्र जात उग्र का अर्थ है, उग्र जात का अर्थ है राक्षस कुल में असुर परिवार में मेरा जन्म हुआ, उग्र राक्षस कौन था, हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में मैं जन्म लिया हूँ, हैं तो ये तन इसलिए ये लोग आपको प्रसन्न, तो मैं कैसा बचसा अमृत, तो मेरा वचन ये लोग जो देवता लोग ने मुनि सिद्ध सभी आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, तो मैं कैसा आपको आराधना कर पाए, न आराधी तुम प्रसन्न करने में अस जो अक्षम रहे, और जो फिर मैं कैसा अपने को पूर्व गण यद्यपि पूर्णतया योग्य थे सब, लेकिन मैं तो अपने को संपूर्ण अयोग्य मानता हूँ, क्योंकि मैं उग्रजात अर्थात एक राक्षस के घर में जन्म हुआ हूँ, इसलिए मैं कैसे आपको प्रसन्न करूँ, किम तोष्टुम अर्हती सह मे हरि उग्रजात, हे हरि हे भगवान, भगवान को हरि कहते, हरि किस लिए कहते भगवान को, हैं क्या कहते हरि शब्द का एक अर्थ भी नृसिंह देवी खड़ा हरि ना हरि इसको भी कहते हैं सिंह को बा, लेकिन हरि शब्द का अर्थ भी सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, चैतन्य महाप्रभु कहते कि हरि का अर्थ दो मुख्य है, गौरांग महाप्रभु कहते हरि शब्द में बहुत अर्थ हो सकता है लेकिन दो अर्थ मुख्य है, सर्व अमंगल हरे भक्तों की समस्त मंगल को हरण करने वाले हैं, और प्रेम देकर उनके चरण कमल में उसके मन को भी हरण कर लेते हैं, सारे कलमशों को पापों को भी हरण कर लेते हैं, अंत में भक्त का मन को भी हरण कर लेते हैं, मन को भी चोरी कर लेते हैं, तो इसलिए हरि नृसिंह ने प्रहलाद महाराज कहते कि हरि हरि हे भगवान हे भक्त वत्सल, असुर परिवार में जन्म लिया उग्र जात ही, और मैं कैसे आपको प्रसन्न कर पाऊंगा, जब ये ब्रह्मा शिव आदि 33 कोटि देवता सिद्ध चारण किन्नर आदि सभी सारे मुनि ऋषि प्रयास करके आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, जो लोग सतगुणी माने जाते हैं ऊर्ध्व लोक में निवास करते हैं, और मैं तो इसी मर्त्यलोक में एक उग्र मने क्या तमोगुणी राक्षस के घर में जन्म लिया, मैं कैसे आपको प्रसन्न करने में समर्थ होऊंगा? हैं, अर्थात अपने दैन्यता को प्रकट करते मैं सबसे अयोग्य हूं। हैं, प्रभुपाद ने इसलिए तात्पर्य में कोट करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी ऐसे महान संत थे, गोस्वामी थे, गोस्वामी मैंने छह गोस्वामी की स्तर पर वो भी थे जो जिन्होंने चैतन्य चरितामृत जैसे अमूल्य ग्रंथ की रचना करके दिए। लेकिन उन्होंने भी ऐसे ही चैतन्य चरितामृत की जो रचना करने प्रारंभ कर रहे हैं तो वो भी अपने ऐसे जो अयोग्य समझते थे। हैं, कहते कि जगाई माधाई है जो हईते मुई से पापिष्ठ पुरी से रोकीट हईते आमी से लघिष्ठ, मैं जगाई माधा से भी अभी अधिक पापी हूं। आप सोच रहे हैं हम जगाई माधे से भी ज्यादा पापी हैं? हैं, जगाए माधी ज्यादा पापी थे कि हम ज्यादा पापी हैं? हैं, साधारणतः हम ड्रामा देखते ना जगाए माधाई की उधार, भाई जगाए माधाई सबसे बड़े पापी थे कि हम पापी उनसे भी ज्यादा पापी है? किस लिए हम ज्यादा पापी उनसे? आप तो बोलोगे हम तो खुद ही इतने मर्डर किए, जगदे माधाई तो कितनी मर्डर कर चुके थे, कोई काम नहीं था जो नहीं किए थे, सभी काम में सभी प्रकार के परस्त्री हरण क्या ला हजारों मर्डर कर चुके थे, बहुत कुछ के शराब पीते सब कुछ अवैध, चारों नियम तोड़ चुके। आप चारों नियम तो तोड़ते नहीं, चारों नियम पालन कर रहे हैं, तो फिर कैसे जगाई माधाई हुए थे हम इसे पापी, जगाई माधाई से अधिक पापी कैसे? हैं, जगाए माधाई जब वचन दिए चैतन्य महाप्रभु को पाप हमें और पाप नहीं करेंगे, फिर दोबारा पाप नहीं किए? हम गुरु को वचन देते हैं दीक्षा के समय में चार नियम पालन करेंगे और कभी मैं पाप कर्म नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी करते हैं। हैं, फिर भी वचन देकर गुरु को फिर भी करते, लेकिन जगाए माधाई जब वचन दिए महाप्रभु को फिर दोबारा नहीं किए, छोड़ दिए उसी दिन फिर उनके। हैं, तो इसलिए हम जगाए माधाई से भी अधिक पापी है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमको ही उद्देश्य करके शिक्षा देने के लिए सिखाते कि बद्ध जीव की स्थिति कैसे है। हम सोचते कि जगाए माधाई सबसे पतित थे, और जगाए माधाई पतित नहीं थे, वो सिखाने के लिए यहाँ पर भूमिका निभा रहे थे, वो तो जय विजय थे। हैं, वही जय विजय द्वारपाल थे वैकुंठ के दर्जे पर, वही ही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप बनकर आए थे भगवान के, वो रुद्र भगवान को वीर रस को आस्वादन कराने के लिए तीन बार आए हैं, हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु, फिर रावण कुंभकर्ण, फिर शिशुपाल दंत बक्र बनकर, फिर भगवान से प्रेम प्राप्त करने के लिए अपने स्वेच्छा से तीसरे चौथे बार आए थे जगाए और माधाई बनकर। जगाई माधाई हईते आमी से पापिष्ठ पूरी से रकीट हईते आमी से लघिष्ठ है। जो ड्रेन चलता है ड्रेन के अंदर पानी सड़ जाने से कीड़े से पड़ जाते हैं, तो उससे भी बड़ा घृणित हूँ समाज में, मेरे समान घृणित व्यक्ति संसार में कोई भी नहीं है। कौन कहते? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मैं इतने बड़े पापी हैं। लेकिन हम सोचते हैं सही कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे व्यक्ति थे हैं, लेकिन फिर वो किस प्रकार दैन्यता को प्रकट करते हैं। प्रभुपाद जी ने जैसे कहते कि मेरे पास में कोई योग्यता नहीं, योग्यता बिचारे किछु नहीं पाई तुम्हारा करुणा सार। भक्त सब समय ऐसे दैन्यभाव को प्रकट करते हैं। प्रभुपाद ने कहते कि मेरे पास में वेद नहीं, मेरे पास ज्ञान नहीं कि भक्ति भी नहीं। तो हम कह सकते प्रभुपाद जी के पास में ज्ञान नहीं है, सारे इतने सारे ग्रंथ कौन दिया भक्ति वेदांत तात्पर्य लेकर? प्रभुपाद जी को अज्ञानी थे हमारी तरफ है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं मेरे पास ज्ञान नहीं है कि भक्ति भी नहीं है, नाम बहुत बड़ा है मेरा लेकिन मेरे पास ज्ञान भक्ति कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार दैन्य तक भक्तों की जो शुद्ध भक्त है उनके सबसे जो पहला लक्षण है दैन्यता। भक्ति ठाकुर कहते हैं कि शरणागति में, इसलिए भक्ति जो आगे बढ़ता है, भक्त कैसे आगे बढ़ेगा? भक्ति महारानी भी एक कैरियर, उसको भी एक वाहन चाहिए जिस वाहन के ऊपर बैठकर वो आगे चलती है। हम भक्ति में यदि कोई आगे बढ़ना चाहता है, भक्ति को आगे बढ़ाना चाहता है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो सबसे जो पहला गुण आवश्यकता वो है दैन्यता। यदि व्यक्ति अहंकारी है, घमंड है उसके मन में, हैं मैं इतना हूँ महान हूँ बड़ा, तो फिर वो कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए प्रहलाद महाराज भी जैसे महाजन हैं, चैतन्य महाप्रभु भी उसी को शिक्षा अष्टक में लिखे, इसलिए महाप्रभु ने उसको भी कोट करते हैं, थोड़ा तपि सुनी चलो तरो रूपि सही सुना मानी ना माना देना कीर्तनिया सदा हरि। दैन्यता के अर्थ संक्षेप में इतना ही है, हैं ऐसे ही तृण से भी अधिक तुच्छ वृक्षसी सहनशील होकर अपने सम्मान के प्रति इच्छा न रखते हुए दूसरे को सम्मान देते हुए सदा भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने सॉरी प्रहलाद महाराज ने जो स्तुति प्रारंभ कर रहे थे सबसे पहले उसी दैन्यता को प्रकट कर रहे हैं। यदि हम देखें कि उनकी स्थिति समस्त देवताओं की ऊर्ध्व में ब्रह्मा शिव के उप ऊर्ध्व में भी वो थे भक्त की भक्ति भक्त के रूप में, लेकिन उन्होंने कहते कि मैं सबसे बड़ा गिरा हुआ व्यक्ति हूँ। ये मुनि ऋषि देवताएं तो बहुत ऊर्ध्व में सतगुणी सब थे ऊर्ध्व लोक में निवास करते हैं। हे प्रभु वो लोग आपको समर्थन ने शांत नहीं कर पाए अपने स्तुति के माध्यम से, और मेरे बात क्या कहूँ, मैं तो एक राक्षस के घर में जन्म हुआ हूँ, हिरण्यकशिप की पुत्र के रूप में जन्म हुआ हूँ, तमगुणी हूँ, तमगुण में भरा हुआ हूँ, और ये कैसा संभव है कि मैं आपको प्रसन्न कर पाऊंगा, भाई सही सही मैं आपकी स्तुति व गुणगान कर पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले स्तुति प्रारंभ करने के पहले ही प्रहलाद महाराज दैन्यता को प्रकट करते कि मेरे में से मैं क्या कहा जाए, मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि जो भक्त का भक्ति में जो भक्ति करना है तो हमें सब समय ऐसे ही भावना को अपनाना चाहिए। हम दूसरे से श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए अपने को, सब समय सबसे गिरा हुआ व्यक्ति मानना चाहिए। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी व्यक्त करते अपने भावना को कि जगाए माधाई से पतित हूँ, जो कि कोई नाली में बहते हुए पानी में उसमें कीड़े से भी मैं अत्यंत घृणित हूँ। भाजपा तो वैसे प्रहलाद महाराज भी इस प्रकार भावना को व्यक्त कर रहे कि मैं समस्त देवता सतगुणी थे मुनि ऋषि ब्रह्मा देवतागण वो भी आप प्रसन्न नहीं कर पाए, राक्षस घर में जन्म हुआ तमगुणी हैं एक बालक हूँ, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर पाऊंगा। यदि उनके पास में सारे योग्यता था किनकी स्तुति करने के लिए, सिंहदेव की, आगे स्तुति करेंगे। इसलिए महाजन जैन गतस्य पंथा, हमें जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं सबसे पहला गुण क्या है, सीखना है। प्रहलाद महाराज के सबसे पहला स्तुति प्रारंभ से ही कहते कि सबसे जो पहला गुण आवश्यकता है वो है दैन्यता है ह्यूमिलिटी। तो इसलिए आज समय हो चुका है, आज कथा प्रारंभ हुआ, इसलिए यहीं पर कथा को विश्राम वाणी विश्राम करते हैं, विश्राम देता हूँ वाणी को।